ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी बहुत प्यार से बोले, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे शिव बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों बाबा को शुक्रिया? लंबी लिस्ट है कि नहीं? किसके पास बड़ी लंबी लिस्ट है बाबा को शुक्रिया कहने के लिए, वो जरा हाथ उठाए। देखो, बैठ के लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए और बीच बीच में उसको देखिए और फिर से प्यार से बोलिए। क्या बोलेंगे? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। तो देखना, जीवन जीना बड़ा आसान और बड़ा आनंदमय हो जाएगा। शायद फिर जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद यही रह जाएगा कि बाबा को शुक्रिया बोले। क्यों जी रहे हैं भाई? क्योंकि बाबा को शुक्रिया कहना है उन सब चीजों के लिए जो उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है, कृपा है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि बच्चे, मैं कोई कृपा नहीं करता हूँ, भगवान भगवान है। इसीलिए उसको कृपा का सागर कहा गया है कि वो कृपा करते हुए भी क्या बोलता है, मैं किसी पे कृपा नहीं करता हूँ। और बाबा उसको डिफाइन कैसे करते हैं कृपा को? कृपा का डेफिनेशन है करो और पाओ। लेकिन बात यह है कि सारे कल्प में तो नहीं, आधा कल्प में ये चलता है कर्म फिलॉसफी। जो करोगे सो पाओगे, जितना करोगे उतना पाओगे। लेकिन संगम युग में बाबा बड़ी चतुराई से उसमें डेविएशन ले आते हैं अपने बच्चों के लिए। वो क्या है? जितना करोगे उतना पाओगे? नहीं, पदम गुणा मिलेगा बच्चे। ये जो डेविएशन है, ये जो स्पेशल है, ये संगम युग पे ही होता है। संगम युग में बाबा ने मुझ आत्मा को अपना बनाकर इतनी बड़ी कृपा की कि बच्चे, तुम बस एक कदम चलो तो मैं हजार कदम तुम्हारे पास हूँ। तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ तो हजारों कदम मदद की मेरा तुम्हारे साथ है। ये बाकी सारे कल्प में ऐसा नहीं होता है। कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग में। मुझे क्या करना है? मुझे बस उस बात की अनुभूति को दिल में रख के दिल से कहना है। क्या कहना है? शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया। तो देखना, जीवन में बड़ा आनंद आने लगेगा। और जीवन को कैसे जिए, इतना आनंद पूर्वक कैसे जिए, उसका सिंपल फॉर्मूला है, एक बल एक भरोसा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसका कारण ये नहीं है कि हमारा कोई नहीं है, हमारे बहुत हैं, बहुत। इतना बड़ा परिवार सोचो, लेकिन सबके होते हुए भी हमने बाबा को पकड़ा हुआ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ठीक है, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जितना उसमें हम फोकस्ड रहेंगे, हमारी प्राप्ति अधिक होगी। स्नेह सबसे रखना है, दिल का प्यार उस एक से रखना है। जब उससे फोकस्ड रहेंगे तो हमारी प्राप्ति बहुत अधिक होगी और हमारे अंदर अपनी शक्ति भी बहुत अधिक आएगी। जिस कार्य के लिए हमने अपने जीवन को दिया है, हम उस कार्य को बहुत सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो इस जीवन में एक ये भी बहुत बड़ी चीज है, वो है एक बल एक भरोसा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जब ये कमिटमेंट है और हम बाबा के हो गए हैं तो देखो फायदा कैसे होता है। एक कहानी, छोटी सी बात सुनाती हूँ, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ये। ये एक सेठ के पास एक व्यक्ति गया, मजदूर गया, और कहा कि सेठ मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। सेठ ने कहा मुझे लोगों की जरूरत है, लो चलो मैंने तुम्हें हायर किया, तुम काम में लग जाओ। अभी वो बात चली रही थी, वो व्यक्ति सामने बैठा था, तभी सेठ के पास कोई और व्यक्ति आया। सेठ वहां एंगेज हो गए, फिर कहीं काम पड़ गया, तुरंत वो बाहर चले गए। ठीक, शाम को वापस आए। जब शाम को वापस आए तो वो व्यक्ति वहीं बैठा है, कहा सर मैं जाता हूँ आज के दिन। कहा ठीक है। कहा साहब मेरा पगार, पगार समझते हैं क्या, मेरी सैलरी, आज के सारा दिन का मेरा वेज, मेरा काम करने का पैसा मुझे दिया जाए। सेठ ने कहा लेकिन आज तुमने कुछ काम नहीं किया है। कहा लेकिन आपने मुझे हायर किया ना, जब आपने हायर किया तो पगार तो बनता ही है। बनता है कि नहीं बनता है? जब सेठ ने कह दिया कि तुम आज से अपॉइंटेड हो, मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट दे दिया, तभी से चाहे वो काम करे चाहे नहीं काम करे, उसका सैलरी बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। सेठ को देना पड़ा। ठीक है, वो तो उस दुनिया का सेठ वो जाने, उसके काम करने वाले जाने, लेकिन हम किस सेठ के पास आए हैं? सोचो सोचो हम किसके हैं? सर्वशक्तिवान, सेठों का जो सेठ है, शाहों का जो शाह है। ठीक है ना? तो सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम बच्चों को अपना बनाया है। जितने समय हम उनके हैं, उनके पास हैं, हमारी प्राप्ति कई गुना अधिक है, कई गुना है। मतलब इस दुनिया के गुणा गुणों सब छोटे पड़ जाए। बाबा कभी कहते ना, आप बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। समझते हैं पद्म क्या होता है? जानते हैं पद्म क्या होता है? हाँ, पता है पद्म क्या होता है? एक, एक में एक जीरो लगाओ दस, एक जीरो और लगा दिया सौ, एक जीरो और लगाया हजार, एक जीरो और लगाया दस हजार, एक जीरो और एक लाख, दो जीरो और एक करोड़, फिर उसके बाद भी है। एक में कितने जीरो लगते होंगे तब पद्म होता होगा, बताइए? किसी को पता है, अंदाजा है? एक में जब आप 18 जीरो लगाते हैं तो एक पद्म होता है। सोचो वो कितना होता है, सुना? और पद्मा पद्म माना पद्म स्क्वायर, स्क्वायर समझते हैं? अब पद्म स्क्वायर कितना होता होगा बताइए आप? हाँ, वो मैथमेटिशियंस के कैलकुलेटर्स भी सब फेल हो जाए, इतना लेने के लिए उसमें जगह भी नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? तो बाबा हमें क्या देता है उसका इस कलयुगी दुनिया के मैथमेटिशियंस के पास भी कोई अंक आंकड़ा नहीं है, इतना देते हैं। पद्मा पद्म, एक में 18 जीरो, उसका स्क्वायर पद्मा पद्म। ठीक है, इतना कुछ बाबा देते हैं, इतना अनलिमिटेड मिलता है। प्राप्ति बहुत ऊंची है, लेकिन बाबा जो हमसे चाहते हैं उसके बदले में क्या चाहते हैं? सिंपल लॉयल्टी। क्या चाहते हैं? ऑनेस्टी, लॉयल्टी, बाबा के साथ ईमानदारी, वफादारी और फरमाबरदारी। बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम बाबा के साथ ईमानदार रहें, वफादार रहें, बाबा के फरमाबरदार रहें। जो बच्चे इतना करते हैं वो ऑटोमेटिकली बाबा से पद्मा पद्म गुणा भाग्य पाने के अधिकारी हैं। ईमानदार कैसा, वफादार कैसा? बाबा की पूरी मुरली चली हुई है इन तीनों शब्दों पे, दो तीन मुरलियां चली हुई हैं, अव्यक्त मुरलियां। ईमानदार, वफादार और फरमान बरदार क्या होता है? ईमानदारी कैसी हो, वफादारी कैसी हो, फरमाबरदारी कैसी हो। ईमानदारी कौन से रिश्ते में लिया जाता है बताइए, वफादारी किस रिश्ते में ज्यादा ली जाती है, और फरमाबरदारी क्या होती है। आज्ञा का पालन करना फरमानबरदारी है। लोग मोस्टली कहते हैं ये मेरा बच्चा बड़ा फरमानबरदार है, जो मैं आज्ञा करूं, जो भी बात कहूं वो मानता है। वफादारी क्या कहते हैं, पति पत्नी के बीच में, स्वामी स्त्री के बीच में, या प्रियतम प्रियतमा के बीच का जो संबंध है उसको वफादारी कहते हैं। आज्ञाकारी, जो आज्ञा मिले उसे करने वाला। ईमान मतलब भले वो गुरु का रिश्ता हो, पिता पुत्र का रिश्ता हो। और ईमानदारी, जब किसी से बिजनेस टर्म होता है, पैसे की लेन देन होती है, उसमें ज्यादा ईमानदारी जो रहती है। तो बाबा के साथ हर संबंध में मैं अपने आप को बस ये चेक करूं, क्या मैं ईमानदार हूं, वफादार हूं, फरमावरदार हूं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो बाबा के ये पद्मा पदम भाग्य का मैं क्या कहूं, मैं हकदार हूं। तो मुझे अगर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, तो उसका हकदार बनना है, तो क्या करना होगा, बाबा से ईमानदारी, वफादारी और फरमानबरदारी रखनी है। जब ये शब्द सुनते हैं तो बड़े भारी लगते हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को, मैं हमारे बड़ों की भाषा में बोलती हूँ, कई लोग क्लास कराते हुए बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, हम सभी बाबा के पैम्पर्ड बच्चे हैं। पैम्पर्ड समझते हैं क्या होता है, ज्यादा ही लाड कोट से जो बच्चे पलते हैं ना, और थोड़े से वो बड़े इजी हो जाते हैं ऐसे, उनको पैम्पर्ड बच्चा कहा जाता है। समझ में आ रहा है पैम्पर्ड बच्चा क्या होता है। लाड प्यार से कई बार थोड़ा सा बच्चा बिगड़ जाता है ना, भाई ये तो बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से पले हुए हैं, तो उनके पांव जमीन में नहीं लगते हैं, वो बच्चे थोड़े से ज्यादा ही अच्छे होते हैं, खुश होते हैं। और क्या कहें, मतलब माँ बाप को आज्ञाकारी तो होते हैं, लेकिन माँ बाप भी उनको उस हिसाब से चलाते हैं, भाई ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, चलो जाओ जैसे चलना है चलो। और वो नटखट भी थोड़े से होते हैं, तो कहते हैं इन्होंने लाड प्यार से बच्चे को बिगाड़ा हुआ है, पैम्पर्ड बच्चे समझो कहीं आसपास वैसे ही बच्चे होते हैं। तो हमको बाबा ने बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया है, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मैं बाबा के उस लाड प्यार का क्या रिस्पॉन्स दे सकता हूं, उसका राइट यूज करूं कि मिस यूज करूं, क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहता हूं, और जो चाहता हूं उसको कैसे करूं। इन सबको बैठ के हमें लिखना चाहिए, अपने आप से बात करना चाहिए। मैं आत्मा जिससे सर्वशक्तिवान भगवान ने प्यार किया, अपना बनाया, क्या कहा, बच्चे तुम मेरे हो, जैसे थे कैसे थे बाबा ने अपना बना लिया, कुछ नहीं देखा। मैं हमेशा कहती हूँ, रोज मुरली शुरू करते हैं बाबा तो क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, फिर भी बाबा का पेट नहीं भरता इतना कहने के बाद, फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे। हाँ, एक मीठा नहीं, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे। माना बाबा को कितना प्यार आता होगा हम बच्चों से, कि रोज मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे कहना नहीं भूलते हैं, थकते नहीं है बाबा ऐसा बोलते बोलते। जबकि जानी जाननहार बाबा को अच्छी तरह से पता है कि हम कितने मीठे हैं, हाँ कि नहीं। कभी कभी लगता है कि हम करेले जैसे मीठे हैं या नीम जैसे मीठे हैं, पता नहीं, लेकिन फिर भी बाबा हमको मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे बोलते हैं, हाँ कि नहीं, है कि नहीं। कभी कभी देखो बड़ा अटपटा लगता है अपने आप से, अरे बाबा ने तो मीठा बच्चा बोला, लेकिन मैंने क्या किया, आज कैसे शब्द निकाले, कैसा व्यवहार किया सामने वाले के साथ। लेकिन मेरा बाबा फिर भी क्या बोलते हैं, मीठे बच्चे, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चे। सोचो, तो बाबा का प्यार का तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन ऐसे बाबा के लिए मेरा भरोसा कितना है। जब बात आती है कि बाबा के लिए आपका भरोसा कितना है, कितना प्यार करते हैं भगवान से, कितना दिल का रिश्ता है आपका उनके साथ, तो हर कोई कहेगा क्या बहन जी कैसा प्रश्न पूछ रहे हो, जीवन सारा बाबा के लिए है, बाबा के सिवाय हमारा है ही कौन, उससे इतना प्यार है, तभी तो भाग भाग के मुरली क्लास में आते हैं, तभी तो देखो मधुबन में आए हैं बाबा से मिलन मनाने के लिए। आपको क्या हमारे भगवान से प्यार पे डाउट है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस प्यार और भरोसे का मुझ आत्मा ने कितना लाभ लिया है, आज हमें वो देखना है। और वो कैसा है, उसको समझने के लिए कैसी समझदारी चाहिए। अगर वो समझदारी हमारे पास होगी तो देखना हर बात में बड़ा आनंद आएगा, हर बात में बहुत 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 आनंद आएगा। मैं सब बातें जो मुझे अच्छी लगती हैं उनको कहानियों से रिलेट करती हूँ और अपने आप को भी सुनाती हूँ, भाई बहनों को सुनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ज्ञान की कोरी बातें लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब वो कहानियों से जुड़ी हुई होती है तो वो बातें कहीं ना कहीं याद रह जाती हैं और उसके ऊपर पुरुषार्थ भी अच्छा चलता है। तो मैं कहानी इसके ऊपर पत्थर की कहानी सुनाती हूँ, सुना देती हूँ दोबारा भी, बहुत लोगों ने तो सुना हुआ है क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे भाई बहन भुवनेश्वर के भी बैठे हैं, और भी बहुत भाई बहनों ने सुना होगा, मधुबन में कई बार सुनाया है, दोबारा सुनाती हूँ ताकि वो स्पृहा वो प्रेरणा हम सबको फिर से मिले। अपने आप को भी वो कहानी में बार बार सुनाती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस प्रोसेस में हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या है, कहीं मैं डेविएट तो नहीं हो रहा हूँ, मन से भी हलचल तो नहीं हो रहा हूँ। इसलिए ये कहानी मैं अपने आप को बार बार सुना के उसे किस प्रकार से इंटरप्रेट करती हूँ। कहानी इस प्रकार से लिखी गई है कि आज किसी मंदिर का प्रतिष्ठा दिवस है और उस मंदिर में जो मूर्ति है बहुत सुंदर है। उस प्रतिष्ठा दिवस में दूर दूर से बहुत सारे भक्त श्रद्धालु आए हैं और मूर्ति की बहुत पूजा हो रही है, नैवेद्य से उनकी पूजा की जा रही है और लाखों श्रद्धालु हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह अमृत वेला से ही शुरू हो गई और रात को 11 बज गए जब लोगों की धीरे 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 जाना शुरू हो गया और मंदिर खाली हो रहा है। 11:30 का समय, चारों ओर सन्नाटा है। फिर 12 बज गए तो एकदम सन्नाटा, आसपास दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नहीं। उस सन्नाटे में एक आवाज आई कि ये ऊपर वाला इतना निर्दयी क्यों है, उसने मेरे साथ इतना बड़ा दगा क्यों किया, क्या तुम सुन रहे हो? दूसरी आवाज ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूं। कहा, देखो तुम और हम एक ही पहाड़ी के गोद में सालों तक साथ में रहे, सदियों तक साथ में रहे, एक बार अचानक हम दोनों एक साथ पहाड़ी के गोद से टूट के अलग हुए। जल के धारा में बहते बहते हम सब दोनों एक ही साथ नदी के किनारे आसपास पड़े, क्या तुम्हें याद है? अंदर से आवाज आई, हाँ मुझे याद है। का उसके बाद एक बार एक शिल्पी वहां से गुजरा और शिल्पी ने हम दोनों को एक साथ ही उठाया था, क्या तुम्हें याद है? कहा, हाँ मुझे याद है। कहा, जब हम एक ही जगह के एक जैसे दो जने हैं तो फिर उस ऊपर वाले ने तुम्हें आज भगवान बना दिया, लाखों श्रद्धालुओं ने तुम्हें आज आके नैवेद्य से पूजा किया, अर्चना किया, और मुझे मुझे और लाखों श्रद्धालु अपने पांव के नीचे रौंदते गए। मैं चीखता रहा, किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। उस ऊपर वाले ने इतना बड़ा भेद क्यों किया, मेरे साथ अन्याय क्यों किया। सुना किसकी कहानी है, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये कौन आपस में बात कर रहे थे? दहलीज पे पड़े पत्थर और मूर्ति बने पत्थर की बातचीत चल रही थी। सुना, जब इसने इतनी सारी बातें बोल दी, अब उत्तर किसको देना था? मूर्ति बने पत्थर को। तो उसने कहा, भाई आपने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन अधूरी है। मैं वो कहानी आपको फिर से सुनाता हूँ। ये सत्य है कि पहाड़ी की गोद में हम दोनों सदियों तक एक साथ थे। फिर जब वहां से टूटे तो एक ही साथ लुढ़कते हुए नदी किनारे आकर के पड़े। ये भी सत्य है कि हम दोनों के ऊपर एक ही साथ एक शिल्पी की दृष्टि पड़ी, शिल्पी हमें साथ ले आया। लेकिन उसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। शिल्पी की दृष्टि पहले आप पे पड़ी थी, उसने आपको उठाया और जैसे ही छेनी और हथौड़ा मारा, आपने चीखना शुरू कर दिया, आप टूट पड़े। तो मूर्तिकार ने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दिया, उसने आपको एक साइड रख दिया। उसके बाद मेरी बारी आई। 6 महीने तक ठक ठक ठा ठा छेनी और हथौड़े से मूर्तिकार शिल्पी मुझे मारता रहा, ठोकता रहा, मारता रहा, लेकिन मैंने कभी उफ भी नहीं किया। मैं टूटा नहीं, उफ भी नहीं किया। मैं उनकी हर मार को बड़े आनंद के साथ स्वीकार करता रहा, इसलिए मैं मूर्ति बना। मेरे भाई, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर छेनी और हथौड़े के मार से तुम टूटते नहीं, बिखरते नहीं, मेरा क्या होता मुझे नहीं पता, लेकिन आज इस स्थान पे तुम बैठे हुए होते। सुना, दुनिया की बाकी आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन मैं अपनी बता सकती हूँ और इस अपने परिवार की बात बता सकती हूँ। वो ये कि शिल्पी की दृष्टि हम पे पड़ी है। शिल्पी हम पत्थरों को शिल्पागार में लेके आ गया है, शुरू हो गई है मूर्ति बनाने का प्रोसेस। इसलिए ये छेनी और हथौड़ा ही प्रोसेस है उस मूर्तिकार का, हमें मूर्ति बनाने का। ये जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, बातें आती हैं, ये उस मूर्तिकार का हमें मूर्ति बनाने का सलीका है। यही छेनी और हथौड़े हैं परिस्थितियां। परिस्थितियों में कोई तो बिखर जाता है टूट के, और कोई फिर निखर जाता है। तो मुझे बिखरना है या निखरना है वो मुझे सोचना है। जो बिखर जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाए, जो निखर जाना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाए। ठीक है, तो आज हम सभी दृढ़ प्रतिज्ञा करें, जब मैं हूं ही उस मूर्तिकार के शिल्पागार में, तो कोई और छेनी हथौड़ी मुझ पे बजी नहीं सकती है। मेरे जीवन की हर परिस्थिति उस मूर्तिकार के छेनी और हथौड़े से आ रही, क्या कहें, वो हथौड़ा है। ठीक है, जो स्ट्राइक हो रहा है, जो हथौड़ा बज रहा है, वो उस मूर्तिकार की दी हुई हथौड़े के आवाज है, हथौड़ा है। ठीक, तो क्या करना है, बिखरना है कि निखरना है? बड़ी आवाज में क्या करना है? निखरना है। वो बना के छोड़ने के लिए संकल्पबद्ध है। उसने कहा है, बच्चे मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाने आया हूँ, बस बच्चे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। अगर बनाते बनाते तुम कहीं हिलोगे तो थोड़ा नाक टेढ़ा हो जाएगा या हाथ टेढ़ा होगा, तो उस हिसाब से तुम्हारा जो ग्रेडेशन है वो इधर उधर हो सकता है। अगर तुम पूरी तरह से सहयोग दोगे तो मैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूँ। क्या करना है? बाबा को सहयोग देना है। सभा में मेरे लौकिक पिताजी बैठे हुए हैं, वो मेरे गुरु गाइड भी हैं, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए उन्होंने हमें बचपन से प्रेरणा दिया है और चलाया भी है। उन्होंने एक बात सिखाई है और हमेशा उनकी क्लास में वो वाली क्लास जब आती है तो मुझे अच्छा लगता है, सबको सुनाते रहते हैं। वो ये है कि इस ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं करना है। उनकी टीचर ध्यानी दादी रही और ध्यानी दादी जी ने उन्हें एक पाठ पढ़ाया है, वो ये कि इस ज्ञान मार्ग में अगर आगे जाना है तो क्या करो, हर बात में हाँ जी हाँ जी बोलते रहो, कुछ नहीं भी आता है तो भी हाँ जी बोलो, बाबा सिखा देगा। जो दे रहा है आपको सेवा उसको पता है आपकी कैपेसिटी क्या है, तो इसीलिए वो दे रहा है। अगर ऐसा भी लगता है स्थूल रूप में कि मुझे ये कार्य नहीं आता है, मुझे दे दिया है हलवा बनाना लेकिन मुझे आता नहीं है, तो भी आप ना मत बोलिए, कहिए दीदी जी आप अगर सहयोग देंगे थोड़ा बता देंगे तो मैं बाबा की याद में हलवा बना लूंगा, इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो आप यकीन मानिए कि आप हलवा बनाना सीख जाएंगे। तो क्या करना है ज्ञान मार्ग में? हमेशा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहना है। जब हम उसकी हर बात में हाँ जी हाँ जी हाँ जी करेंगे तो देखना मुकाम में पहुंच जाएंगे। कोई भी परिस्थिति में हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, कहा ना पैम्पर्ड बच्चे हैं बाबा के और बहुत ज्यादा, तो कभी कभी हम रिएक्ट होते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है रिएक्ट होते हैं, लेकिन रिएक्ट होने के बाद देखना मार्क्स कट जाते हैं। वो शायद थोड़ा हिलना डुलना वाला सिस्टम हो गया है तो वो छेनी हथौड़ा उल्टा सिल्टा कहीं लग गया होगा। लेकिन अगर हम रिएक्ट नहीं हुए, हर परिस्थिति में उसको सामने रखें बाबा को, तो वो परिस्थिति बड़ा आनंददायक होगा जीवन में, आगे ले जाने वाला है। हाँ, जो कहते ना निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनशंति, जो ये निश्चय बुद्धि है, मेरा फेथ है, मेरा बाबा पे निश्चय है, वो मुझे उस मुकाम पे पहुंचा के रहेगा जिसके लिए बाबा ने संकल्प किया है, सर्वशक्तिवान ने सोचा है। खाली मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को बाबा के लिए अवेलेबल रखना है। बचपन का एक शायरी जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत बार अपने आप को सुनाती हूँ, वो ये है और वो मुझे बहुत ताकत देता है। कैसी भी परिस्थिति कैसी भी बात आती है फिर से उठ जाके खड़े हो जाने की ताकत देता है, वो ये है, मालिक तेरी रजा रहे और बस तू ही तू रहे, ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। सुना, समझ में आया क्या है वो? मालिक तेरी रजा रहे, जो तू चाहता है वही हो, क्योंकि उसमें भी बहुत लॉजिकली सोच समझ करके इस बात को सेट कर लीजिए यहाँ पे, क्यों उसकी रजा रहे मेरी क्यों नहीं रहे, कुछ तो मेरी भी चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। लौकिक में भी क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा लाडले होते हैं तो माँ बाप के सामने भी आप यही सोचते हैं थोड़ा मेरा भी तो चलना चाहिए ना, चलाते हैं आप। बहनों को ज्यादा अनुभव होगा इस बात का, तो माँ बाप चलाते हैं और वैसे ही बाबा के पास भी कभी कभी कहना चाहिए कुछ मेरा भी तो चलना चाहिए। लेकिन अनुभव ये कहता है कि मैं सोच सोच के कितना सोच सकती हूँ, मेरी सोचने की कैपेसिटी क्या है, मैं क्या मांग सकता था, मुझे आता क्या था, मेरी बुद्धि का दायरा क्या है जिसके लिए मैं सोचूं। लेकिन जिसके लिए वो सोच रहा है उसको दोबारा सोचने की कहाँ जरूरत है, जो वो देना चाहता है उसके आगे मेरी इच्छा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो बहुत धूल जैसी है। ठीक है, तो जब वो दे रहा है और मैं उसे एडमायर करूं, थोड़ा धीरज रख करके उसके शुक्रगुजार होकर के उन चीजों को आने के लिए आवाहन करूं, देखना कि मेरी रजामंदी मेरी इच्छा बहुत थोड़ी है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं अपनी राजी क्यों रखूं, मैं अपनी मर्जी क्यों उसके सामने रखूं, क्या रखूं, मालिक तेरी रजा रहे। फिर और बस तू ही तू रहे, मेरी प्राप्ति का सर्वोच्च सीमा तू है, जिसे तू मिल गया उसको और क्या चाहिए। मिला है बाबा, जिन लोगों को बाबा मिला है वो जरा हाथ उठाए। हाँ, वो जो गीत है ना आजकल बजता है, मुझे एकदम वायरा कर देता है, पागल बना देता है, मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गीत सुन के। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है, सोचो क्या प्राउड है उसमें। हाँ, संसार में कोई कहता है मैंने ये किया वो किया, मेरी ये डिग्री है, मेरी ये पढ़ाई है, मेरा ये स्टेटस है, मेरा वो स्टेटस है, कहते रहे कोई कितना, लेकिन हमारे स्टेटस के सामने कहीं किसी का कोई स्टेटस ही नहीं है। क्या स्टेटस है हमारा, बोलो क्या स्टेटस है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। कोई कहता है पता दीदी मैं उससे मिलके आया हूँ, ये इंटरव्यू हुआ है, कल मैं प्रेसिडेंट से मिलके आया, मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की वाइफ से मिलके आई। हाँ, जो भी है, कई बहनें हैं, अपना अपना सुनाती हूँ, मुझे बहुत खुश होता है, मैं उनके लिए प्राउड फील करती हूँ, लेकिन मैं उनसे ज्यादा प्राउड ये फील करना चाहती हूँ, कराना चाहती हूँ कि हमने किससे मुलाकात की है और किससे रोज रोज मिलते हैं, कौन है वो, सोचो सोचो। हर शाह हर शहनशाह जिसके आगे सिर झुकाता है, वो शाहों का शाह शहनशाह मेरा अपना है, उसको मेरी पड़ी है, वो मुझसे प्यार करते हैं, उनको मेरा कदर है। इतनी बड़ी दुनिया में 750 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं, इतनी करोड़ आत्माओं में से उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ी है, मैं कितनी ना स्पेशल हूँ, बहुत स्पेशल हूँ, ठीक। तो इसलिए मुझ स्पेशल को स्पेशल ही सोचना है। मैं थोड़ा सा अगर क्या कहें नीचे का सोचूं, मोटे मोटे रूप में सोचूं, तो उसको कैसा लगता होगा, सोचो, बाबा को अच्छा लगता होगा, अच्छा लगेगा। बाबा वो डोगरी वाली कहानी सुनाते हैं साकार मुरली में, याद है किसी को, डोगरन की कहानी। एक राजा था, वो जंगल में गया था पहाड़ियों पर शिकार खेलने, तो वहां एक डोगरन थी। राजा की डोगरन से दिल लगी हो गई, तो राजा ने कहा चलो मैं तुम्हें अपनी रानी बना के लेके जाऊं। डोगरन मान गई, आ गई। और यहाँ पे आने के बाद दो कहानियां हैं। जब वो डोगरन पहाड़न राजा के पैलेस में आई, तो यहाँ दो कहानियां हैं। क्या दो कहानियां हैं? पहली कहानी है कि डोगरन बड़ी सिंसियर निकली, उसने कहा अच्छा राजा ये होता है, इतनी मर्यादाएं होती है, रानी को ऐसा चलना होता है, सात पर्दों में रहना होता है, इस प्रकार से जीवन जीना होता है, मैंने राजा से प्यार किया है तो मैं उन सब चीजों को मानती हूँ, मैं इन सात पर्दों को मानती हूँ, मैं ये ज्वेलरी ये अपीयरेंस को मानती हूँ, मैं इस गद्दी को मानती हूँ, मैं इस स्टेटस को, रानी होने के स्टेटस को मानती हूँ, क्योंकि मैं राजा से प्रेम करती हूँ। लेकिन दूसरी जो डोगरन थी, हाँ किसी ने बहुत अच्छी कहानी उस पर लिखी थी, आसमां चाहिए जहां पना, मुझे आसमां चाहिए, वो कहानी तो जैसी भी लिखी थी उन्होंने इंडिपेंडेंस के हिसाब से लिखा था, लेकिन उस डोगरन का वहां मन नहीं लगा, कहां पे, राजप्रासाद में। वो सात पर्दे उसे मुंझाने लगे, कहां पहाड़ी की खुली हवा, कहां वो हिरनी की तरह भागती फिरती थी, यहाँ राजा के यहाँ सात पर्दों में मुझे नहीं चाहिए। तो कहा जहां पना मुझे आसमां चाहिए, मुझे तेरा ये घर नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए। तो क्या हुआ होगा, राजा उसको डोगरन को लेके पहाड़ी पे छोड़ के आ गया। अब ये दोनों कहानियां बाबा के साकार मुरली में आती है, सुना है सबने, जिन लोगों ने ये कहानी सुनी है हाथ उठाओ। अच्छा, बस अभी मुरली में वो कहानी 1.5-2 महीने में एक बार जरूर रिपीट होती है, तो आप वो कहानी सुन लेना, जब सुनोगे तो याद कर लेना। तो क्या सुना इस डोगरन की कहानी में, मुझे कौन सी डोगरन बनना है। हैं तो हम सभी डोगरन हैं कि नहीं, कहां पहाड़ियों में घूम रहे थे, कैसे थे, लेकिन किसने हमारे पे दृष्टि डाली, किसने कहा तुम मेरे हो, किसने कहा, सोचो ये बाबा कौन, दाढ़ी वाला बाबा, बड़ी बड़ी आंखों वाला बाबा, नहीं, कौन बाबा, सोचो, सर्वशक्तिवान भगवान ने कहा कि तुम मेरे हो, कहा जिसको कान में कभी बाबा ने सचमुच कहा कि तुम मेरे हो, वो जरा हाथ उठाए। सोचो सोचो, दुनिया में कोई आकर के देखे इन लोगों को तो समझ में आवे। कान में सर्वशक्तिवान भगवान ने कहा कि तुम मेरे हो। अब क्या करना है, ये पर्दे मुझाते हैं, बाबा की श्रीमत, बाबा के घर की मर्यादाएं मुझाते हैं कि अच्छे लगते हैं। जिनको ये मर्यादाएं, ये पर्दे अच्छे लगते हैं, वो जरा हाथ उठाए। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। चलो अपने लिए एक जोरदार ताली बजाओ कि सचमुच बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा की हर बात, हर श्रीमत, हर एक चीज जो बाबा मुझसे एक्सपेक्ट करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और अपना गीत है, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी हम काम उनके आ गए। सोचो सोचो, भगत होकर के सोचो, आधा कल्प हम ही तो भगत थे ना। आजकल के भगत कोई भगत नहीं है, छोड़ो मतलब हमारी कोई कंपैरिजन नहीं, हो भी सकते हैं बहुत अच्छे भगत हो, लेकिन हमारे जैसा भगत तो कोई हो ही नहीं सकता है, हाँ कि नहीं। आधा कल्प तो खूब भक्ति की है। अब उस वो भगत बन करके देखो, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी हम काम उनके आ गए। सोचो, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का बहुत मान्यता है, उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ हैं, ऐसा मतलब जो भी है, भावना की भूमि है वो और लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वहां की एक कहानी है, चैतन्य महाप्रभु गए थे उनसे मिलने के लिए, और उस समय हमारे भगवान जी को आज भी बुखार चढ़ता है, और जब बुखार होता है तो बंद होता है, मतलब मंदिर बंद होता है, सबको मिलने की इजाजत नहीं होती है, और वैद्य लोग उनकी उस समय ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ये भी विधि है, हर साल वो विधि होती है इस प्रकार से रथ यात्रा से पहले। तो उन दिनों में जब मतलब बंद होता है, दरवाजा बंद है और भगवान से कोई भगत नहीं मिल सकते हैं, उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु बंगाल से भाग भाग के आए, चल चल के आए भगवान से मिलना है। जब वो मिलने के लिए गए तो पंडा लोगों ने कहा कि आप नहीं मिल सकते हो। कहा क्यों नहीं, कहा बस हमें ही इजाजत है, हम उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम ही उनसे मिल सकते हैं, आपको उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, आप इस गेट से अंदर नहीं आ सकते हो। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, किसी ने नहीं सुना। तो कहा अच्छा, भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, मैं इतना दूर से उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, इतना बेचैन हो रहा हूँ, और उन्होंने दरवाजा बंद करवा दिया, मैं जाता हूँ, जाके समुद्र में अपने प्राण दे देता हूँ। तो वो समुद्र में गए प्राण देने के लिए। कहानी इस प्रकार से है, कहानी तो क्या, ये अभी एक दो साल, सौ साल की बात है, तो लोग कहते हैं यही सचमुच सत्य है, जैसा भी है। तो वो पानी के अंदर अंदर जाते गए और समुद्र का पानी कम कम होता गया, इसलिए अभी भी पानी में वहां पे इतना वो काट नहीं है लोग वहां, इसलिए समुद्र में स्नान करने जाते हैं। और अंदर गए, फाइनली मतलब उन्होंने कहा कि मुझे प्राण दे ही देना है, क्योंकि मैं, मुझे अगर भगवान प्यार नहीं करते, मुझसे नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा जीवन किस काम का है। तो वही कहते हैं जगन्नाथ जी आए और उन्होंने उनको आलिंगन किया। वो जो फोटो दिखाते हैं कि भगवान और भगत का आलिंगन, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि भगवान को अपने भक्तों से कितना प्यार होता है कि वो उसके हर जगह पे छोटी 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 बातों में आके पहुंच जाते हैं। तो सोचो अगर भक्ति मार्ग में वो इस प्रकार से हमारी बातों में पहुंचे होंगे, और अभी संगम युग में तो आए ही मेरे लिए हैं, किस लिए आए हैं बाबा, शिव बाबा संगम युग में इस धरती पे किसके लिए आए हैं, किस लिए, मेरे लिए आए हैं, सुना, किसके लिए, मेरे लिए आए हैं। तो हर एक बच्चा इस प्राउड से कहता है कि भगवान मेरे लिए आए हैं, वो मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मुझे कहाँ फिसलने दे सकते, नहीं, वो मुझे अपने आलिंगन में बांधे हुए रखते हैं कि बच्चे तुम मेरे हो, मुझे तुम्हारे हर बात का ध्यान है, मुझे पता है कि नहीं पता, उनको पता है। तो इसलिए हमेशा बस यही ध्यान रहे कि हम उसके काम में आ रहे हैं, उसको हमेशा मेरा ध्यान है, बहुत ज्यादा ध्यान है, मैं भगवान के लिए स्पेशल हूं, बहुत स्पेशल हूं, वो मेरे लिए स्पेशल थे हैं भी, लेकिन अभी संगम युग में मैं उनके लिए स्पेशल हूं। सुना? तो ये जब हमें पता होगा, मतलब इस भान में हम रहेंगे तो हर बात में, हर परिस्थिति में हम फिसलेंगे नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ये वाली परिस्थिति उनके द्वारा आई है, वो अच्छे नहीं है ना, इसलिए उन्होंने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की है। अगर वो नहीं होते तो मेरी जिंदगी में ये परिस्थिति नहीं होती, ठीक है कि नहीं? आप अपने जीवन का कोई भी वाक्या याद करें, आप देखना, लॉजिकल माइंड आपको ये कहेगा कि अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं होता, या फलाने ने जो उसको गलत पट्टी पढ़ाई, अगर वैसा नहीं पट्टी पढ़ाया होता तो ये बात वैसी नहीं होती, ये सिचुएशन वैसा नहीं होता, बहुत अच्छा होता। क्यों उस व्यक्ति ने उनको ऐसा कहा? वो अच्छे नहीं है। आता है कि नहीं आता है मन में? ऐसा आता है कि नहीं आता है? आता है, मुझे भी आता है। लगता है कि ये अच्छे नहीं है, इन्होंने ऐसा किया ना, वो ऐसा नहीं करते थे तो ऐसा होता था, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आता है। लेकिन जब फिर बैठती हूँ ना बाबा के पास, तो मुझे अपने आप पे ही बहुत हंसी आती है कि ये क्या है, आज तो कमिट किया था सब परिस्थिति, बाबा को पता है कि कैसे मुझे मूर्ति बनाना है, इसीलिए ये परिस्थिति दिया है, कौन से साइड से छैनी मारना है, कहाँ से हथौड़ा, नाक को कैसा शेप देना है, आंख को कैसा, तो इसीलिए परिस्थिति क्रिएट की है, फिर तुम क्यों हिले? ठीक, अच्छा, लेकिन जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति में मुझे रिएक्ट नहीं होकर के रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसके लिए भी सोचना जरूरी है। क्योंकि ज्यों ज्यों हम क्या कहें, ऊपर चढ़ते हैं ना, हमारी सिंसियरिटी काउंट करती है, हम हर किसी बात को छोड़ के भी नहीं बैठ सकते हैं, रिएक्ट नहीं करके रिस्पॉन्स हमारा बहुत काउंट करता है। तो मुझे उस परिस्थिति में रिस्पॉन्स भी करना है, लेकिन मैं कैसे रिस्पॉन्स करूं उसके लिए मुझे ठंडे दिमाग से सोचने की भी जरूरत है, स्ट्रेटेजी बनाने की भी जरूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि उन सब चीजों के लिए भी मैं बाबा की मदद लूं, बाबा से पूछूं, बाबा मुझे यहां कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या करूं, बहुत सिंसियर भी बनना पड़े। उसके लिए बाबा के साथ मेरा कम्युनिकेशन भी बहुत क्लियर चाहिए, क्लीन चाहिए। वो तब होगा जब लंबा समय का मुझे अभ्यास होगा। छोटे थे तो यही सिखाया जाता था, अच्छा कोई प्रॉब्लम आई है, ये ले लो मुरली, आंख बंद करो और मुरली का कोई पेज खोलो। उस समय वो लिथो वाला मुरली आता था ना, 3 पेज का, पुरानों को याद होगा, कहीं से उल्टा पुल्टा करके फिर खोलो, फिर एक जगह पे उंगली डालो, देखो पढ़ो, देखना आपके प्रश्न का उत्तर होगा। और मैं आपको बताऊं, 99% ऐसा ही अनुभव है कि सब प्रश्नों का उत्तर मिलता था। हाँ, है कि नहीं? अनुभव है, जिन जिनको ऐसा अनुभव है वो जरा हाथ उठाए, ये देखो। हमें लगता है कि हम ही बचपना करते रहते हैं, लेकिन सब लोगों को ये अच्छा लगता है ऐसा सब कुछ करना, बहुत अच्छा। तो देखना, बाबा हर बात का रिस्पॉन्ड देते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि जितना ये जो भी बात है उतना ही नहीं, थोड़ा और इसमें डेप्थ की जरूरत है, वो भी करने की जरूरत है। तो इसलिए फिर थोड़ा सा बैठ के बाबा से और राय सलाह लेने की जरूरत है, बाबा ये वाली बात पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ आपके मदद की जरूरत है, आपके साथ देने की जरूरत है, फिर उसे और अच्छी तरह से करें। ये भी अनुभव कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिस दिन हमने बाबा से, बाबा को बहुत याद किया हुआ होगा, बाबा आज ये परिस्थिति आने वाली है, उस दिन अमृत वेले 2 बजे भी नींद खुली होगी और सारा अमृत वेला एकदम ऐसा वाला योग हुआ होगा, बिल्कुल झुटका नहीं आया होगा, कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं आई होगी, लेकिन ठीक टाइम पे देखते हैं कि उफ, काम नहीं बना। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, शायद सफलता नहीं मिली, ये क्या हो गया? पापा को बोला भी था, याद भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था, सब कुछ तो ठीक था, फिर क्यों नहीं काम हुआ? शायद बाबा साथ में नहीं थे, है ना? क्या हुआ होगा बोलो उस दिन, जिस दिन इतना कुछ करने के बाद भी सफलता नहीं मिली होगी, उस दिन क्या होगा बताओ? कुछ कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रांगली अपने जीवन का रखिए, वो ये है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे हर कदम में सफलता समाई हुई है, मेरे जीवन में असफलता का दूर दूर तक कहीं नाम निशान नहीं है, लेकिन ये जो काम हो गया असफलता उसका क्या? अरे वो कुछ दिखाई दे रहा है, सब अच्छा हो जाएगा। सुना, ये जो दिख रहा है वो एक्चुअली वो नहीं है। आप कभी पहाड़ी पे चढ़े आते हैं ना, मधुबन जब जाते हैं तो देखना, एक जगह पे ऐसा भी है कि आपको नीचे उतरना होता है। आप तो पहाड़ी चढ़ रहे थे, नीचे क्यों उतर रहे हैं? इसका मतलब आप रिवर्ट आ रहे हैं क्या? रास्ते में गड़बड़ी है? ऐसा ही रास्ता है, ऊपर चढ़ने के लिए नीचे आना भी जरूरी है, ठीक है कि नहीं? तो कोई बड़ी सफलता के लिए, छोटी विफलता या यहाँ पे भी कोई ऐसी बात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असफलता आपके जीवन में आ ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। जिनका साथी भगवान है उनके जीवन में असफलता का स्थान हो ही नहीं सकता है। हाँ, वो हमें कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव देने के लिए बात आई है, आकर के उसे एनालाइज करें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इसमें क्या करना है। तो आप देखना, हर छोटी बड़ी बात, हर जो असफलता है वो सफलता की चाबी है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सीक्रेट है जो आपको सिखाने बताने के लिए है। धैर्य चाहिए जीवन में उस समय, ठीक है? तो क्या करें, ऐसे हंसते खेलते अपने जीवन में, हाँ, कुछ ऐसा नुस्खा बनाएं कि जीवन अच्छा लगने लगे, जीवन की हर बात अच्छी लगे। तेरे फूलों से भी प्यार, कांटों से नहीं प्यार, ऐसा ना, क्या है गीत, ऐसा ही गीत है ना, तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से नहीं प्यार, ऐसा है नहीं, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। तो इसलिए जो भी बात आ रही है, जब जैसी परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट करें, और देखना डिफिकल्ट सिचुएशन से जब आप पार होते हैं और वहां से जब निकल के आते हैं तो आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, अनुभवी आत्मा बन जाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है बताइए, पता है आपको? सबसे बड़ी दौलत अनुभव है, अनुभव है। तो जब आप अनुभवी हो जाते हैं और उस दौलत को संभालना जानते हैं तो धीरे धीरे देखना आप बहुत दौलतमंद बनते जा रहे हैं, बहुत स्पेशल होते जा रहे हैं। नहीं तो कहेंगे, अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें किसी बात का अनुभव है? तुमने इन परिस्थितियों को झेला है? ऐसे ही लाड प्यार से चलते रहे हो तो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। कहते ना, हमारे यहाँ जब कहानी सुनाते हैं ना, बचपन में हमारे दादाजी लोग हमें बहुत कहानियां सुनाते थे। जब भी हम गांव में जाते थे छुट्टियों में, तो हमारे जितने भी गांव में सब दादाजी जैसे होते हैं ना, तो उनके पास जाके कहानियां सुना करते थे। तो कहानियों की जो शुरुआत होती थी ना उन दिनों, तो ऐसे होती थी, वो हमें पूछते थे, दुख कही भी कि सुख कही भी, कि जहां अंगेली भेजी ता कही भी। हाँ, उड़िया भाई बहनों ने समझा होगा, दुख की बात बताऊं कि सुख की बात बताऊं, कि जो मैंने अपने जीवन में झेला है, जो मेरा अनुभव है, आपको अनुभव की बात बताऊं। तो हम हमेशा कहते थे कि अनुभव की कहानियां सुनाइए, ठीक है ना? वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, बड़ी अच्छी होती है। तो अनुभवी की, अनुभव की बातें बहुत अच्छी लगती है, और आज तक भी हमारी आंखों में ऐसे हैं सुनी हुई कहानियां जैसे हमने आंखों से देखा होगा, इतने प्यार से वो लोग कहा करते थे, क्योंकि अनुभवी आत्माएं हैं। और मैं आपको बताऊं, वो बहुत सिंपल लोग, एकदम गांव के सिंपल लोग, लेकिन उनकी जो क्या कहें, आंतरिक शक्ति है, वो आजकल के बहुत बड़े बड़े लोगों से कई गुना ज्यादा थी। कई गुना ज्यादा। तो क्या है, क्योंकि उनके पास परिस्थितियां आई और उन परिस्थितियों को उन्होंने इतने आसानी से पार किया और उसमें सफल रहे कि बात मत पूछो। हर टफ सिचुएशन है, एक बहुत इंटरनेशनली बेस्ट सेलिंग बुक है जिसका टाइटल है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, डॉक्टर रॉबर्ट स्कलर का ये बुक है जिसमें वो ये बताना चाहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां कठोर समय लंबे समय तक नहीं चलती हैं, लेकिन जो लोग कठोर हो गए स्ट्रांग हो गए हैं ऐसे स्ट्रांग लोग लंबे समय तक चलते हैं। स्ट्रांग स्ट्रेंथ कैसे मिलता है, परिस्थितियों को झेलने से स्ट्रेंथ मिलता है। जिस बात से हमने शुरू किया था वहां आते हैं, समय होता जा रहा है, वो ये कि किसी व्यक्ति को हमें नहीं सोचना चाहिए कि उसने परिस्थिति क्रिएट की थी, लेकिन भगवान ने उस बेचारे को इंस्ट्रूमेंट बनाया हमें कुछ सिखाने के लिए, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारी दृष्टि वृत्ति, हमारा दृष्टिकोण उनके लिए बहुत ऊंचा होना चाहिए। समय नहीं है, लेकिन मेरे दो फेवरेट बहुत अच्छे अच्छे कहानियां हैं जिसका सार मैं बताती हूँ। ध्रुव की कहानी, लास्ट में ध्रुव से जब भगवान पूछते हैं कि ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, मांगो, मैं भगवान हूँ, मेरा धर्म है, जब मैं भक्त से मिलता हूँ और उसके तपस्या से प्रसन्न होता हूँ तो मुझे उससे कुछ देना पड़ता है। पहले तो ध्रुव कहता है भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया, आप मिल गए, आपके गोद में बैठ गया, मेरी संतुष्टि हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने इंसिस्ट किया, ध्रुव मांगो तुम कुछ, क्या चाहिए। तब ध्रुव ने कहा, प्रभु अगर कुछ देना ही है तो मेरी माता का उद्धार करो, जिस माता के इंस्पिरेशन से मैं यहाँ आया हूँ। कौन सी माता? सुरुचि, माता सुरुचि की, जिसने कहा था कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, मेरा बेटा बैठेगा। तो ध्रुव ने पूछा, लेकिन माँ मुझे पिता के गोद में बैठने की इच्छा है, मैं कहाँ जाऊं? तो उस माता ने कहा, जाओ भगवान विष्णु की गोद में बैठो, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। जिस माता ने मुझे ये रास्ता बताया, जिसके कारण मैं आज इस सुख की अनुभूति कर रहा हूँ, तो हे प्रभु उसका उद्धार करो। तो माना जो व्यक्ति निमित्त बने हैं हमारे डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए, उन लोगों के लिए दिल में बहुत स्पेशल प्यार और रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट बने हैं, उनको हमसे कोई लेना देना नहीं, उनके मन में हमारे लिए कोई गलत भावना नहीं है, वो हमसे प्यार करते हैं। लेकिन चूंकि वो लेसन्स हमें पढ़ने की जरूरत थी, नियति ने, ड्रामा ने, बाबा ने उसे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, ठीक है। तो जब हम इस भाव से चलते हैं तो सबके लिए बहुत प्यार आता है, हमारे डिफिकल्ट सिचुएशन हमें डिफिकल्ट नहीं लगते हैं। और सोचो डिफिकल्ट कैसे लगेंगे, किसका हाथ पकड़ा हुआ है, किसका हाथ पकड़ा है, प्रियतम का हाथ पकड़ा है, और वो प्रियतम साधारण नहीं है, वो सर्वशक्तिवान है। जब वो साथ में है, वो गीत है ना, तेरा साथ है तो मुझे क्या फिकर है, मुझे क्या डर है, नहीं क्या है वो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तो इसलिए जब वो साथ में है तो मुझे कैसी कमी। ओम शांति।
आती ही